Hare Krishna, our very great fortune we are listening to His Grace Krishna Maharaj Puriji at Japanese Park, recorded on 6th of March 2015 at Holi.
Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Jai Radha
तो आज बहुत ही पावन दिवस है। हरे कृष्णा कृष्णा। अभी सब लोग आगे आ जाइए, क्वेश्चन आंसर सेशन चलेगा आप लोगों के साथ। आगे आ जाए, इधर आगे आ जाओ।
Thank you. छोटा डाल देना छोटा, ये वो नहीं है प्रोजी, स्विच इन्होंने कर दिया जरा दबा, ये कंपनी में ले जाओ ठीक करा देना एक घंटे लगाने, स्विच थोड़े ढीले हो गए ना छोटे ले, मैं को इसके बजाय स्विच ऑन करने
हरे कृष्ण इसका नाम है पंकज मोचन, जो भी मैंने बने थे तो हम लोग अपने कॉलेज पे चीज के लिए लेकर आए थे उसको, और ये बड़े बड़े फेल हो जाते थे काम आया था, तो आज वो नहीं कर रहे, तो बड़ा कारण भी होते क्योंकि आज होली का अवसर है, और वैसे हम लोगों के जीवन में जो फेस्टिवल है उसका ये उद्देश्य होता है कि चलो चाहे दिवाली हो चाहे न्यू ईयर हो या कोई फंक्शन हो कि घर वाले को इकट्ठे हों, है ना, और हरे कृष्ण फिर से बातचीत करें, दिवाली है तो सभी इकट्ठे हों पूजा पाठ करें, और होली हो तो ठीक है आपस में रंग लगाएं फिर होली बात हो दूसरे से लेकर आए, या एक और विषय होता है कि छोटी अच्छा बढ़ जाती है हमारी स्कूल की हो चाहे ऑफिस की हो थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है, लेकिन ये त्योहारों के पीछे एक उद्देश्य होता है, एक तो इसकी पृष्ठभूमि अगर देखें कि इसका रीजन क्या क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो सेलिब्रेशन के पीछे रीजन होता है कि कोई ना कोई स्पिरिचुअल कोई ना कोई उसका कनेक्शन है पीछे, तो जैसे होली फेस्टिवल है, होली फेस्टिवल जो है अपने आप में रंगों का त्यौहार कराता है उत्सव, और इसका जो मानी जैसे होली हमने बताया था तो होली का जो थी वो होली विषय की धर्म थी, है ना, और प्रहलाद को मारना चाहती थी गोदी में लेके बैठी आग लगाई गई, लेकिन प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ और होलिका खुद मर गई, तो भक्तों ने सर पर इसका हमेशा से हर साल जो है होलिका दहन का कार्यक्रम होता है, इसलिए हम देखते हैं कहीं भी गाड़ी ले जाए तो कहीं ना कहीं पेड़ इकट्ठे करते हैं, लकड़ियां इकट्ठी करते हैं, पूजा अर्चन होता है वो किया जाता है, इसके अलावा लोगों की मटी रिवाज भी होती है कुछ ना कुछ करते हैं यहाँ पर, लेकिन इसके पीछे जो आधारभूत जो है वो ये कि हम लोग उस समय उस घटना को भी याद करें जो घटना उस समय घटी थी और जिसकी वजह से हम ये फेस्टिवल मना रहे हैं, तो सारे फेस्टिवल्स में जब देखें आप धीरे धीरे जैसे कलयुग का पतन हो रहा है उसमें बोला है दिनों दिन दिन ब दिन ये चीज कम होगी, आयु कम होगी, बुद्धि कम होगी, रिलेशनशिप खत्म होते जाएंगे, पाप और ये सब चीजें बढ़ती जाएंगी, दिन ब दिन कम होगा सच्चाई ऑनेस्टी ये सारी चीजें कम हो जाएंगी, और हम देख रहे हैं प्रत्यक्ष कि किस प्रकार हमारे साथ में धर्म का ये धीरे धीरे कमी आती जा रही है, हम कोशिश भी कर रहे हैं रोकने की लेकिन रुक नहीं रहा, आप किसी भी धर्म में चले गए, आज आप बात करें अगर इस्लामिक देश में तो वो इस्लामिक स्टेट चाहते हैं, आईएसआईएस वाले क्या चाहते हैं कि एक स्टेट हमें देखें जहां पर हम लोग अपने कट्टर धर्म का पालन करें, है ना, और उसी के लिए पूरे विश्व में कट्टरता फैलाएं और फिर क्या करें सबको इस्लाम में लाएं, उनके हिसाब से वो धार्मिक काम है, लेकिन आज के परिवेश में अगर देखें जहां पर इतना मॉडर्नाइजेशन हो चुका है सिविलाइजेशन कि वो लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते कि किसी व्यक्ति को 24 घंटे बैठे न रखें, है कि नहीं, लेकिन जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां पर उनको पूरे के पूरे बिल्कुल पढ़ने पड़ते हैं, पूरे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, और जो उनके और रिचुअल्स हैं पांच व्यक्ति नमाज अदा करना चाहिए कहीं पर भी हो बड़ा मुश्किल लगता है, तो उपाध जी ने कहा कि दीक्षा दी तो लोगों को बोला कि 64 माला रोज करो, कितनी, हाँ लेकिन 64 वाली हालत ही नहीं थी हमारी 64 चैंटिंग मीन्स एक आग हो गए एक दिन में 8 घंटे माला ही करनी है, बोले कहीं भैया घूमने का भी छोड़े कहाँ बैठो बैठे बैठे घर ही बैठो, है ना, तो कई बात बोला ठीक है 32 राउंड 34 आवर्स इम्पॉसिबल नहीं हो सकता, कई बात बोला 25 राउंड कहते नहीं हो सकता वो बार स्टिल 3 आवर्स डिफिकल्ट, कोई बात बोला 16 राउंड एंड नॉट लाइक दिस 16 माला से तो कम नहीं, तो भक्तों ने स्वीकार कर लिया, तो हम ये बता रहे हैं कि चाहे सिखे भी हो सिखे में 5 के कड़ा कंगा केश इस तरह की चीजें हैं तो ये रखते हैं, लेकिन हम देखते हैं उनके धर्म में भी उनके रिचुअल्स में भी धीरे धीरे कमी आ रही है ना। वो लोग भी दाढ़ी कटवा लेते हैं, कुछ ना कुछ छुपके छुपके खाना पीना शुरू हो गया है। जैनी वो कितना स्ट्रांग था, प्याज लहसुन तो बिल्कुल दूर दूर तक भूल जाओ, लेकिन अब जो नई जनरेशन आ रही है तो क्या हो रहा है, प्याज लहसुन तो क्या सब कुछ चल रहा है। शर्मा पंडित होते हुए शर्मा शर्मा बू स्टॉल शर्मा टी स्टॉल शर्मा मीट शॉप भी बोल रखी है तो ब्राह्मण होते हुए जब काम चल रहे हैं तो धर्म का कैसे पतन हम देख सकते। इस मामले में हम देखें 5 लाख महीना ज्यादा गर्मी होते थे है ना, और सारी हिंदू कम्युनिकेशन को बड़ा स्ट्रांगली फॉलो करना पड़ता था, लेकिन 4 शादी थी उनको अलाउड, लेकिन धीरे धीरे उन लोगों को भी लग रहा है बड़ा मुश्किल है, और वो अब एक आधी शादी करके काम चला रहे हैं, जो थोड़े पढ़े लिखे हुए कहां जा रहे हैं, अपना जहां पर ज्यादा कट्टर होता है वहां से निकल के दूसरे इलाकों में चले जाते हैं जहां पर फोर्स ना हो, ज्यादा दिक्कत ना हो, जो हम रूल्स फॉलो करें चाहे ना करें, लोग देखें चाहे ना देखें, हमें बच के रहना लगे उसे। फिर आप क्रिश्चियनिटी में चले जाएं तो सबसे पहले ये मॉडर्नाइजेशन विदेशों में हुआ वेस्टर्न कंट्रीज का, तो वेस्टर्न कंट्रीज में मॉडर्नाइजेशन हुआ तो वहां पर सारे रूल्स रेगुलेशन टूटना शुरू हुए और सब लोग ओपन रहना शुरू हो गए। उनको लगा कि ठीक है हम लोग जो है जो मन में आएगा वो करेंगे, और गवर्नमेंट जो सरकारी नियम बनते थे वो बनते थे पहले धर्म के अनुसार कि हाँ हम लोग धर्म का पालन करेंगे, हम स्थापित करेंगे, हम ये करेंगे, तो जो लोग ज्यादा इस समय धार्मिक थे तो वो उनको वोट देते थे कि धर्म का पालन करेंगे, लेकिन धीरे धीरे एकदम से 30-40 साल के अंदर मॉडर्नाइजेशन या एनिमलाइजेशन जो भी बोले तो ये इतना तेजी से गया कि लोगों उनको वोट नहीं दिए जो कट्टरता की बात करते हैं, कि उनको वोट दिए जो थोड़ा लिबरल है, जो चाहते हैं ये भी हो थोड़ा ये भी हो, तो वो पार्टियां जीतने लगी जिन्होंने नियमों को फॉलो करना बंद किया। फिर और अब आप देख सकते हैं आजकल ऐसी पार्टियां जीत जाती है जो लोगों को ज्यादा स्वतंत्रता होती है, खाओ पियो ऐश करो, ना तुम हमें तंग करो ना हम तुम्हें तंग करें, और खाओ पियो ऐश करो जो हमें अलाउ करता है सब। अच्छा खाओ पियो ऐश करो के भी साइड इफेक्ट है, आप कुछ खाते हैं तो आपके शरीर खराब, आपका दिमाग खराब, आपकी हालत खराब, आपकी आदतें खराब, आप पीते हैं तो वो भी दिक्कत, घर में परेशानियां, पड़ोस में झगड़े, आसपास से लड़ाई झगड़े, हाँ जी नाली भी की बात हो रही ना, तो खाओ पियो ऐश करो में भी ऐश में तब्दील हो जाते हैं, और उसकी वजह से जब वो अपने सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए अपने को चाहते हैं कि हम लोग जो करें हमें कोई रोके ना, तो जो तुम करना चाहते हो तुम्हें कोई ना रोक दीजिए, दूसरा करना चाह रहा है इसको भी थोड़े रोकेंगे, तो लोगों का दिमाग खराब हुआ और हमको लगा कि मैं जैसे जी रहा हूं वो ठीक है, लेकिन जो दूसरा जी रहा है वो गलत है, तो फिर लोगों को लगा नहीं इतना खुला छोड़ना भी ठीक है, सारे कुत्ते अगर कितने खोलने हैं क्या हुआ, बड़ी दूर मानते यही समाज की, तो इन्होंने कुछ ना कुछ रोज होने चाहिए, तो फिर कुछ लोग रूल्स की तरफ जाते हैं, तो समाज में यही चल रहा है, समझ नहीं आ रहा लोगों को क्या करें, खुला छोड़े बांध ले फिर रस्सी लंबी कर दे क्या करें लोगों के साथ, वो कंफ्यूज है समाज में। और देश हमारे देश के प्रधानमंत्री इन्होंने कहा मैं गांव गांव तक क्या पहुंचा दूंगा, वाईफाई पहुंचा दूंगा, अगर दिल्ली जैसे शहर वाईफाई से के जिंदा से निकल नहीं पा रहे, देखिए जैसे मॉडर्न इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी आती है तो उसकी कुछ न कुछ सहूलियतें होती हैं, जिस लेटर को आप पहले किसी के घर भेजते थे वो 2 दिन बाद पहुंचता था, अब एक बटन दबाते मेल लिखते हैं वो 1 सेकंड में पहुंच जाता है, सहूलियत है, लेकिन इसी इंटरनेट के जाल से दुनिया अब घर बैठे एक क्लिक में कोई भी गंदगी से लेकर कहीं देश की कोई भी चीज देख सकता है, तो जनरली 90% लोगों का जो दिमाग होता है वो ठीक होता है या गलत होता है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लोग कितना परसेंट गलत करते हैं, 90% गलत होता है, तो एक सहूलियत के साथ बहुत सारी बीमारियां, गाड़ियों का संग्रह है कि नहीं है, तभी हम यहां बैठे जल्दी आगे टाइम से आगे, लेकिन बता दें जब गाड़ियां नहीं थी तब सड़क पर क्या चलते थे, टांगे चलते थे है ना, लेकिन जब जाते थे टांगे तो थोड़े साल गोबर भी कर देते थे उसके स्मेल आते थे, तो जमादार वगैरह साफ करते थे उसको, तो अंग्रेजी को लगा भी इसके लिए कुछ होना चाहिए, गाड़ी जल्दी तो पहुंचा नहीं दी है लेकिन गूगल वाला सिस्टम समझ में आया। हम ऐसी गाड़ी बनाएंगे जो गूगल ना करे। तो कार का आविष्कार हुआ और कार पता कैसे गूगल करती है, वो अंदर गूगल कर देती है, मैं इतना पॉल्यूशन करती है, इतना पॉल्यूशन करती है कि जो वो बोला ना मैं कभी नहीं पीता, मैं सिगरेट नहीं पीता, और उसकी छाती अभी से उसका देखा जाए कितना जमा है उसका कार्बन डाइऑक्साइड, तो पता चलता है उसमें भी शायद दिन की बस एक ही बहुत ही है और उसकी उम्र दिन में कोई घटती जा रही है। तो ये लोग पहले सुसाइड किया करते थे, आपके घर में कितने लोग घर में सुसाइड करते हैं, हाथ खराब हो हाथी हाथ खराब करना दे तो कुछ नहीं, एक ही घर में सोता है बस, अच्छा दो एक ही घर में नहीं है पता चले चार हाँ हाँ, तो इसका मतलब सुसाइड का विश्वास कर सकते हैं, सुसाइड के आदमी है होते हैं। अभी तो आप लोग भूलिया मैं बड़े का हजार हजार की लक्ष्य देता हूँ, वहां पूछते तो कोई आदमी खड़ा कर पाता। कारण क्या है कि जो सुसाइड जीव का वो टाइम निकल गया और आगे आगे देश के आगे जाने की 50 कौन बोल रहा है 70 लग 60-70 पहले इतना कम हो गया तेजी से, 70 तक जो है ये चले जाते हैं, 65-70 जहां तो 50 से भी चले जाते हैं, लेकिन एवरेज अगर देखिए तो 65-70 के बीच में है। अगर वो 60-70 तक जीता है ना और तब शरीर छोड़ता है तो लोगों का माइंड सेट तैयार हो चुका है क्या कि अपनी उम्र पूरी रहेगा, मगर 60-70 में पूरी करना बोलते हैं, जबकि पहले 90-100 में आराम से होता था। तो हर चीज का डिग्रेडेशन होगा, उम्र भी कम हो रही है, स्मरण शक्ति भी कम हो रही है। पहले लोग पुराने लोग पहाड़े ऐसे बनाते थे, किसी पूछो ना किसी जा रहे हैं हाथ से पुराने को बोलो है ना दया घर से जा रही बात कई ऐसे रहते हैं। अभी किसी को कुछ पूछ रही थी कंप्यूटर निकालिए कैलकुलेटर निकालिए बुरे बुरी मदद है। पहले फोन नंबर लोगों को ऐसे याद होते थे, याद है किसी को कुछ नंबर कोई 10 नंबर सुना सकते हैं मोबाइल नंबर 10 नंबर सुनाएंगे 10 नंबर वाला नहीं 10 फोन नंबर वाला ठीक है ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कई लोगों से उनका नंबर पूछेगा तो वही मोबाइल उठाते आप समझ पा रहे हैं कितनी तेजी से धर्म खत्म होता जा रहा है, बुद्धि कम होती जा रही है और हम लोगों को इसकी आदत पड़ गई है, इस माहौल में जीने की एक आदत पड़ चुकी है। ठीक है सभी तो जा रहे हैं, सभी मर रहे हैं, हम भी मर जाएंगे, सबकी बुद्धि कम हमारी भी कम है, सब मर जाएंगे हम भी चले जाएंगे, क्या दिक्कत है? वो भी फॉलो नहीं करता, वो भी फॉलो नहीं करता, तो ठीक है हम भी नहीं करेंगे। लेकिन कहने का क्या मतलब है, धर्म जिस तेजी से डिग्रेड हो रहा है, जिस तरह से गिर रहा है और संख्या बढ़ती जा रही है ऐसे लोगों की जो लोग कंफर्टेबल है सिचुएशन में, तो ऐसी स्थिति में बड़ा मुश्किल हो जाता है धर्म की बात करना। हर धर्म जो है हमने बात करें गिर रहा है, नीचे हो रहा है, पॉल्यूशन इनोवेशन रोज नहीं हो रही है, साइंटिस्ट सुबह से लेकर शाम तक बैठे हैं बुढ़ापे का परमानेंट इलाज ढूंढने के लिए, नीचे का परमानेंट इलाज ढूंढने के लिए, लेकिन आज तक सोल्यूशन नहीं निकला। भगवद गीता में लिखा है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषा में दर्शन, इसका दर्शन कीजिए आपके आसपास हो रही है घटनाएं, जन्म भी हो रहा है, बीमारियां भी लगी लग रही है, बूढ़े भी हो रहे हैं और मृत्यु भी प्राप्त हो रहे हैं। कितना बड़ा आश्चर्य है कि हम लोग सब ये सब देखते हुए भी हमें लगता है कि ठीक है मेरे साथ नहीं हो रहा, क्योंकि समय जो है काल के रूप में भगवान धीरे धीरे हर व्यक्ति का हरण कर रहे हैं, उसको क्षीण कर रहे हैं, और हमारी बुद्धि हम लोग इतना बुद्धिमान नहीं है कि इन सब तत्वों को समझ सके। तो शास्त्र कहते हैं जब व्यक्ति भगवान का प्रसाद ग्रहण करता है, अब हर चीज धोनी में रखती है प्रसाद नहीं होती, या कुछ भी निकाल कर भी प्रसाद जैसा देखता है वो प्रसाद नहीं होता। प्रसाद का मतलब होता है वो चीज जो एक शुद्ध भक्त में जो कि भगवान की नियमों का पालन करता है, जिसकी चेतना शुद्ध है, ऐसा व्यक्ति कुछ कुकिंग करता है और उसकी जो कुकिंग में सात्विक वृत्ति होती है और सात्विक भोजन होता है और उसमें तुलसी दल तुलसी का पत्ता रखकर उसे श्री कृष्ण के आगे रखता है और भोग लगाता है और प्रार्थना करता है भगवान से ग्रहण करने की और उसके 15 मिनट बाद उठाता है, तो प्रसाद के रूप में तब्दील हो जाता है भोग। शास्त्र कहते हैं आत्मशुद्धि सत्य शुद्धि सत्य शुद्ध दोनों स्मृति दोनों स्मृति भरो ग्रंथि न होते मोक्ष है। अर्थात जब हम लोग भगवान के प्रसाद में ग्रहण करते हैं तो आत्मशुद्धि पूरे शरीर की और मन की शुद्धि होती है। सत्य शुद्ध बुद्धि हमारे शुद्ध होने लगती है कि जो ब्रेन टिश्यू है हमारे जो ब्रेन सेल्स हैं वो जो प्रसाद के कांटेक्ट में आते हैं जब वो तो प्यूरिफाई हो जाते हैं शुद्ध हो जाते हैं। और जब प्यूरिफाई हो जाते हैं ब्रेन सेल्स तो वो कुछ अच्छा सोचने और उसको ग्राफ करने और उसे स्टोर करने की हिम्मत रखता है। स्पिरिचुअल टॉपिक समझने के लिए एक स्तर चाहिए एक क्वालिफिकेशन चाहिए। तो जब व्यक्ति प्रसाद ग्रहण करता है तो उसकी मानसिकता ऐसी बनती है कि वो ऐसे सत्संग में बैठने की उसकी इच्छा करती है भगवान का नाम लेने के प्रति उसकी जागरूकता बढ़ती है। तो उसके ब्रेन टिश्यू जो है वो प्यूरिफाई होते हैं और स्पिरिचुअल टॉपिक्स को समझने में उसको क्या होता है हेल्प मिलती है और वो आगे बढ़ता है। तो ये प्रसाद का फर्क है। और जो लोग प्रसाद नहीं खाते हैं तो उनके तो ब्रेन टिश्यू डेड हो गए तो उनको यही की चीजें समझ आती है यही की चीजें सबको समझ आएंगी यही की चीजें अच्छी लगेंगी और वो ज्यादा आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए इतना बड़े संसार में लोगों की जनसंख्या अपार है 7 अरब जनसंख्या पूरे संसार में मनुष्यों की लेकिन इसलिए बहुत ही कम लोग हैं जिनके फाइन टिश्यूज हैं ब्रेन टिश्यूज या जो भक्तों के टच में आकर भगवान के नाम की माला कर रहे हैं या इन आध्यात्मिक टॉपिक्स को समझ रहे हैं। हमें कई बार लगता है अभी ठीक है अभी ठीक है ठीक है अभी ठीक है तो समाज को हम जिस तरह से देख रहे हैं आज हम लोग देखते हैं रेलवे क्षेत्र जो है अभी भी कल्चर है अभी भी यहाँ पर संस्कार है लेकिन आप थोड़ा सा दिल्ली के साउथ साइड की तरफ जाएंगे तो आप देख सकेंगे एक शहर के अंदर ही है ना दिल्ली जैसे सिटी के अंदर ही आप देख सकेंगे कल्चर के अंदर क्या आप देख सकेंगे। यहाँ रेलवे में लोग कलर दिखते हैं प्रॉपरली है ना आचरण ठीक है और बहुत ज्यादा क्या कहते हैं तड़क भड़क नहीं है रजोगुण की कमी है ना। लेकिन ये चीज आप साउथ दिल्ली के साइड में जाएंगे तो वहां ज्यादा ओपन लोग देखेंगे वहां पर ज्यादा लोगों को उल्टे से काम करके देखेंगे। तो एक सिटी के अंदर क्या हालत है एक देश के अंदर कई जगह पर है इसलिए बताया जाता है गांव का जो एरिया सब प्राथमिक एरिया है शहरों का राजनीतिक है और जहां पर ये उल्टे से काम होते हैं मदिरालय वैश्यालय इत्यादि ये सारे तांत्रिक जगह है। तो यहां पर हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते किसी तरीके के भक्त बनेगा फिर भी किसी की अगर फोटिया ठीक है किसी के पूर्ण कर्म है तो वहां से निकल कर आ सकता है। लेकिन हम जैसे लोग जिनके वास्तव में भगवान की कृपा के पात्र हैं और बन गए क्योंकि कहीं ना कहीं हमने कुछ प्रसाद ग्रहण किया है भक्तों का संग किया है हरिनाम लिया है तो हमारा जो है कुछ न कुछ योग्यता बन गई है उन स्पिरिचुअल टॉपिक को समझने में। तो इसलिए जो बुद्धिमान लोग हैं उनको मालूम है कि हमारा शास्त्रों का मर्म क्या है एसेंस क्या है शास्त्रों का। शास्त्र बहुत ही सुंदर ढंग से एक्सप्लेन करते हैं कि जो भगवान है उनको हम तीन रूप में देख सकते हैं ब्रह्म इति परमात्मा इति भगवान इति शब्द के अर्थात भगवान के निराकार के रूप में भी पूजा जा सकता है। इसलिए कई धर्मों में भगवान के निराकार बताए गए भगवान को लोकलाइज परमात्मा के रूप में अर्थात छोटे सिंह के रूप में भी देखा जा सकता है जो कि हर के हृदय में कण कण में जाते हैं ये सेकंड रियलाइजेशन एंड टॉप मोस्ट रियलाइजेशन इज भगवान इति शब्द कि भगवान जो है जिसने सारी सृष्टि की है जब इन पर्सन ये व्यक्ति है विद फॉर्म उनका शरीर है उनका रूप है और फिर सारे शास्त्र इन तीनों तथ्यों की चर्चा करते हैं। मेरे में निराकार की भी चर्चा हुई है शास्त्र में परमात्मा के विषय में चर्चा हुई है जो कि शिव दीक्षा विष्णु के रूप में हरेक के हृदय में है और फिर भगवान के विषय में भी चर्चा हुई है कि वो किस प्रकार एक व्यक्ति है जिनका नाम कृष्ण है जिनका धाम गोलोक वृंदावन है जहां पर कौन कौन रहता है किस किस रथ से उनका किस किस व्यक्ति से कैसे आदान प्रदान होता है और अनेक वैकुंठों की चर्चा है जहां पर जाने के बाद व्यक्ति लौट कर नीचे नहीं आता और इस ब्रह्म ज्योति जो कि भगवान के शरीर से निकल रही है ब्रह्म ज्योति उसके लिए जो है विषय में चर्चा मिलती है। और फिर संसार के भौतिक संसार के बारे में ये संसार भगवान ने क्यों बनाया कैसे बनाया और इसका क्या मतलब था। तो बताते हैं शास्त्र में कृष्ण भूमिया जीव भोग वांछा करे निकटस्थ माया झापट अधरे। अर्थात जब लोगों ने जो जीवात्मा भगवान के साथ थे उन्होंने देखा भगवान को एंजॉय करते हुए तो उनको लगा कि हमें भी एंजॉय करना चाहिए भगवान से अलग होकर। तो भगवान ने संसार बनाया जिसे भौतिक संसार कहते हैं और समस्त जीवात्मा जीव भगवान से विमुख होकर एंजॉय करना चाहती थी। माया देवी ने क्या किया उनके संसार में भेज दिया और सारे जीवात्मा संसार में आ गए। और जिस प्रकार कृष्ण वहां पर एक अकेले भेजता है कंट्रोलर है उसी तरह हम भी लोग यहां पर भगवान की तरह क्या बनना चाहते हैं भोक्ता या कंट्रोलर बनना चाहते हैं। इसलिए हम देखते हैं बच्चे से लेकर वृद्ध तक चाहे वो पॉलिटिशियन हो चाहे बिजनेसमैन हो चाहे सर्विसमैन हो चाहे हाउस वाइफ हो सब लोग क्या चाहते हैं मेरे हिसाब से काम हो। हर व्यक्ति चाहता है वो बॉस बनना चाहता है इसलिए चाहता है कि जितनी भी चीजें हैं सारी मेरी इंजामिन के लिए हैं सब कुछ मुझे साझा करने के लिए होनी चाहिए। तो ये जो मानसिकता है कि मुझे मिले सब कुछ सब कुछ मेरे इंजॉयमेंट के लिए है ये मानसिकता ये भगवान की मानसिकता से एकदम अलग है अर्थात गुरु की चेतना से एकदम अलग है। जब तक हमारे अंदर ये चेतना रहेगी दैट आई एम द सुप्रीम आई एम द बॉस और मैं यहां पर हर चीज एंजॉय करूंगा तब तक हम लोग इस संसार में स्ट्रगल करते रहेंगे संघर्ष करते रहेंगे बार बार पुनरअपि जनन पुनरअपि मरण होता रहेगा। क्या गलती कर रहे हैं मरदारी बॉस बनना चाह रहे हैं हम चाह रहे हैं हर चीज हमारे हिसाब से हो हम जो करना चाहें जो खाना चाहें जो करना चाहते हैं हमारे हिसाब से हो। तो ये मानसिकता हमारी भोग की मानसिकता दर्शाती है जैसे जीवात्माएं भगवान की दास है जो मेरे शरीर है कृष्ण मित्र दास कि हम सब भगवान के दास हैं। हम लोगों को जो हमारी टेंडेंसी है जो हमारी तासीर है वो सेवा करने की है आत्मा की इसलिए इस संसार में आके भी हम सेवा करते हैं लेकिन सेवा के पीछे मेरा की क्या रहती है मानसिकता रहती है कि मैं अगर ये कर रहा हूं तो इसे मुझे ये मिले और जो ये मिलेगा इसका मैं भोग करूंगा इसको मैं इंजॉय करूंगा। मैं आज पढ़ रहा हूं तो इसे मुझे ये डिग्री मिलेगी और इस डिग्री के बाद मैं डिग्री होल्डर बन जाऊंगा और डिग्री के बेसिस पे मैं यहां जॉब करूंगा या ये बिजनेस करूंगा और मैं कंपनी का मालिक या अपने अच्छे पोस्ट पे कहलाऊंगा। तो हर व्यक्ति यहां पर भोग करना चाह रहे हैं और ये मेंटालिटी उसको संसार से बाहर नहीं निकलने दे रही और उसकी इतनी सी गलती के कारण उसको बार बार जन्म लेना पड़ता है। ये तो 84 लाख सरकार के कपड़े में से भी कपड़ा हर बारी ग्रहण करना पड़ता है जिससे हर बड़ी गलती हो रही क्यों क्योंकि उसको हर समय भोग की इच्छा थी और इसके कारण से वो एक जीवन जीता हुआ वो भूलता है फिर मृत्यु के पश्चात मृत्यु के उसमें भी आ जाता है लेकिन उसके बावजूद फिर से जन्म होता है। अभी मैं कुछ दिन पहले लगे पढ़ा था आर्टिकल उसमें एक बच्चा विदेश में उसको इतना पुराना जन्म डाला गया और उसने 3-4 साल में लोगों के नाम बताने शुरू कर दिए जो गांव के थे जहां पर वो रहते हो उसको वहां लेकर गए उसने बताया कि मेरी जो नेचुरल डेथ हुई थी मेरी मृत्यु हुई थी मुझे किसी ने मारा था और वहां जाके उसने नाम बताया माता पिता के नाम बताए सारी चीजें पता चली पता कि इतने साल पहले हुआ था तो और उसने उस व्यक्ति का भी नाम बता दिया जिसने उसको मारा था और बाद में उसको जेल गया भी तो ये सारी चीजें बता दी जिस कुल्हाड़ी से मारे वो भी ढूंढा कर देगी कि कहां छिपाई थी कहां मतलब शांति वो कहां पर हुआ था इस घटना का भी पता चला। तो इससे पता चलता है कि पुनर्जन्म होता है ये किताबी बातें नहीं है। तो जो पुनर्जन्म होता है और 84 लाख योनियों का हमारे सामने वर्णन मिलता है। कई बार लोग बोलते हैं आम का बीज लगाएंगे तो आम मिलेगा आदमी का शरीर छोड़ेंगे तो कौन सा मिलेगा आदमी का मिलेगा औरत का छोड़ेंगे औरत का मिलेगा ये नहीं है। शास्त्र ऐसा मना करते हैं शास्त्र कहते हैं पुनर्जन्म तो होगा भगवान कहते हैं यम यम वापिस मन भरा तो जितने जनते का लेगा शरीर मैं दर्द देता हूं जो व्यक्ति मरते समय जैसी जैसी चेतना का स्मरण करता है मैं उसको वैसा वैसा शरीर देता हूं। जड़ भरत थे राजा थे उन्होंने अपना राजपाट त्याग कर भगवान की सेवा में भक्ति में लग गए काफी समय तक भक्ति करी लेकिन अंतिम समय में एक नीलम के बच्चे से आसक्त हो गए उसको बचा लिया था उसको पालने लगे और उसको स्मरण करने लगे अब कहां होगा कहीं जीव जंगल में तो नहीं चला गया कब तक आएगा कोई बड़ा शेर उसको ना खा ले अब भक्ति के नियमों को पालन करना बंद कर दिया और हिरण का स्मरण शुरू कर दिया। और हिरण के स्मरण में जब उसका आखिरी सीमा आया, बेचारा हिरण का स्मरण करते हुए मर गया। और अगला जन्म कौन सा मिला? हिरण का मिला। तो हिरण का शरीर मिलने से, लेकिन जिस अवस्था में उसकी भक्ति थी, क्योंकि भगवान कहते हैं ना मैं भक्त प्रमश होती, ना मेरे भक्त का और ना उसकी भक्ति का कभी नाश नहीं होता। जिसने जिस लेवल तक भक्ति कर ली, स्वल्प से धन से प्राय के महत्व भयात, इस मार्ग में थोड़ी सी भी प्रगति कर लेने मात्र से कोई नुकसान नहीं होता। अर्जुन ने पूछा, भगवान जो भक्ति करता है और समय से पूरी न कर पाए तो उसके साथ क्या होता है? तो भगवान ने कहा दो तरह के भक्त हैं, एक ये थोड़ी सी भक्ति करते हैं फिर मर जाते। तो भगवान ने कहा ये दोबारा जन्म लेते हैं, उनका अच्छा परिवार मिलता है, अच्छा धन धानी मिलता है और फिर अपनी भक्ति शुरू करते हैं। और बाला कि जो और लंबे समय तक भक्ति करते हैं और सफल नहीं हो पाते हैं कि जीवन में भगवान के धाम जानी है, तो ऐसे लोग शुचिनाम श्रीमतान जो पवित्र परिवारों में ब्राह्मण जैसे अच्छे परिवारों में जन्म लेते हैं, वैष्णव के परिवारों में बड़े ही सरल परिवारों में जन्म लेते हैं और वहां जाकर अपनी भक्ति को ना उसी लेवल से शुरू करते जहां पर छोड़ी थी। तो इस प्रकार भक्ति का कभी नाश नहीं होता। तो जितनी भक्ति हम कर लेते हैं उतनी ही शेष ही होता है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, इस संसार में उस संता ने बनते हुए कहा जो तीसरी बार फेल हो गए इस क्लास में कि भैया बार बार फेल हो रहे हैं आखिरी में, चल दोनों मिलकर आत्महत्या कर ले। कहते हैं पागल है, अगर आत्महत्या कर ली तो अगली बार फिर से पहले से बनना पड़ेगा। इतनी मुश्किल से यहां तक पहुंचे तो इस संसार में फिर से करना पड़ेगा। आपने पीएचडी की डिग्री ले ली है लेकिन अगले जन्म में आपको फिर से केजी से शुरू करना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते डिग्री साथ लेके गए, मम्मी बड़ा कहा डिग्री से जब मैं जाऊं तो मेरे साथ ही देना और साथ ही जला भी दो उसको, केजी डिग्री के साथ ही मिलने लगे जन्म में। तो लेकिन आध्यात्मिकता में स्पिरिचुअल लेवल में ऐसा नहीं है, उसमें आपने जहां तक जितना कर लिया तो आगे आप वहीं से शुरू करेंगे। आप देखिए ना, हर व्यक्ति यहां पर बैठा हुआ है भक्ति में अलग अलग उम्र में आया है और आप लोगों के बच्चे आपसे पहले आ गए है ना। तो भगवान क्या देखते हैं, जहां पर थोड़ा बहुत काम हो चुका है, जहां पर थोड़ा बहुत लोग आगे बढ़ चुके हैं, तो जो इतने सारे प्रसाद खा रहे हैं, इतना सारा हरिनाम सुन रहे हैं, तो जब वो शरीर का त्याग करते हैं जितने लेवल की उनकी भक्ति है, तो भगवान योजना बनाते हैं कि किसके घर भेजे जहां पर वो आगे कर सके। है कि नहीं भेज देते हैं बच्चों को नमी में लगती है, चार आठ माला कर रहे हैं, नियम में लटक रहे हैं, पूरा लोग प्रॉब्लम ये वहां से शुरू कर देगा। और कई बार लोग लंबे समय के बाद भक्ति में आते हैं और आते एकदम बड़ी तेजी से इतिहास से आगे बढ़ जाते हैं। तो ये वो कारण है कि जब तक उसके पुराने पुण्य कर्म थे, पाप कर्म थे, सबका हिसाब किताब हो गया, तो अब वो दोबारा से भगवान की भक्ति में उस उम्र से आ गया। तो जहां से भी हम आ गए तो हमें एकदम तुरंत बड़ी उत्सुकता के साथ बड़ी एंथुसियास्टिक भक्ति शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। किसी की भी मृत्यु कभी भी कहीं भी आ सकती है, तो हम लोगों को पता नहीं है। इसलिए हमें हर समय ये सोचना चाहिए कि ये अगला क्षण ही मेरा आखिरी क्षण ना हो, या कल मैं देख रहा हूं ना देख रहा हूं, इसलिए मुझे आज ही इस चेतना में जीना चाहिए ताकि मैं कृष्ण भावना भावित हो जाऊं, ताकि मैं अगर शरीर का त्याग भी करूं, डरना किस लिए? भक्त लोग नहीं डरते। उन्हें मालूम है कि जैसे मैं रोज कपड़े चेंज करता हूं तो रोता थोड़ी डरता थोड़ी, उसी तरह वो 20 घंटे बाद चेंज करता हूं और इनको मैं 70 साल बाद चेंज करता हूं, कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो अगर बदल भी हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं पर्याप्त मात्रा में हरे कृष्ण पर्याप्त मात्रा में भगवान का नाम ले चुका हूं, भगवत गीता पढ़ना शुरू करते भक्तों का संग कर रहा हूं, इसलिए मुझे अब कोई डर नहीं है कपड़े बदलने में। और अगर मैं इसी चेतना से लगा रहा तो भगवान ने साफ साफ कहा है भगवत गीता में, ना मैं भक्त प्रण सकते, मेरे भक्तों का भी नाश नहीं होगा। तो जो लोग भगवान के शंकर में हैं, जो परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं, जिन्हें पता चल चुका है कि हम यहां पर जितना मर्जी बॉस बनने की कोशिश करें बॉस नहीं बन सकते हैं, जो सोकॉल बॉस बन भी गए तो इसके अंदर फ्रस्ट्रेशन बहुत है, मेंटेनेंस बहुत है, दुखी बहुत रहेंगे, परेशान बहुत रहेंगे, संघर्ष बहुत रहेगा। तो इसलिए जब भगवान के भक्त भक्त के सामने आकर भक्ति का विचार समझते हुए सुनते हैं तो उन्हें समझ आ जाता है कि मेरे अंदर इस शरीर के अंदर जो आत्मा है उसके नेचर है सेवा करना। इस संसार में जब तक अपने शरीर की, अपने मन की, अपने पड़ोसियों की, अपने आसपास के लोगों की, देश की सेवा करता रहूंगा तो दुखी रहूंगा। हमारे देश में बहुत सारे देशभक्त हैं, वो भी देश की सेवा करते हैं लेकिन हर समय दुखी। आज देश में ये हो गया, आज देश में वो हो गया, आज हमारा नेता ऐसे निकल आया, आज इस समुदाय के लोगों ने हमारे बारे में ऐसा कह दिया, क्यों ना हम ऐसा करें कि सब कुछ ऐसा कर डालें। हमारी तो संख्या ही बहुत ज्यादा है लेकिन मैं तो करता हूँ, मेरा भाई नहीं करता। मेरा भाई तो करता है लेकिन मेरी वाइफ नहीं मानती। एक घर में लोगों के इतने मत हैं, एक घर में लोग मर्द नहीं बन रहे तो पूरी देश ही कैसे बनेंगे। आज जिस देश को देखकर हम बोलते हैं तुम मुर्दाबाद हम जिंदाबाद, अगला जन्म अगर इसी देश में हो गया तो वहां से बोलेंगे हम जिंदाबाद तुम मुर्दाबाद। मेरे देश भक्त मिल जाए कई बार इतने ज्यादा नारे मांडी देते हैं कि अपने आप को हिंदू तो बोलते हैं लेकिन हिंदू शास्त्र नहीं करते भाई। अगर हिंदू शास्त्र बड़े होते तो फिर इस प्रकार की बात ना करते। अगर बुद्धिमान होते तो फिर प्रचार करते भगवान के नाम का, हमें पता होना चाहिए कि भक्ति के द्वारा ही पूरे संसार को जीत सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने कभी हिंदू होते हिंदू साल की बात नहीं करी, अमेरिका गए आत्मा परमात्मा भगवान की बात करी। उन्होंने कभी नहीं बोला मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं सिख हूं, कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा हम शरीर के अंदर आत्मा है और आत्मा का संबंध पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने संसार बनाया है उनसे है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो ये शरीर की पहचान है, ये तो पंथ पूजा पद्धति की विधि की पहचान है, ये हमारा धर्म नहीं है। धर्म का मतलब होता है जो अलग ना किया जा सके, जिसे धारण किया जाता है। जिस प्रकार अग्नि का धर्म है प्रकाश और गर्मी, सूर्य का धर्म है रोशनी और प्रकाश, पानी का है तरलता और उसका नीचे की तरफ फ्लो करना, चीनी का है मीठा, नमक का है नमकीन, ये उनका धर्म है, उससे हम उसको अलग नहीं कर सकते। उसी प्रकार आत्मा का भी धर्म है और वो क्या है, भगवान की सेवा करना। भगवान ने हमारे को जनरेट किया है या हमें जो बनाया है अपनी सेवा के लिए बनाया है, हम किसकी सेवा कर रहे हैं, अपनी सेवा कर रहे हैं, अपने पड़ोसी की सेवा कर रहे हैं, अपने रिलेटिव की सेवा कर रहे हैं, पूरे देश की सेवा कर रहे हैं। इसलिए हर देश परेशान है, चाहे अमेरिका हो उनको भी डर है, भारतीय हो उसको भी डर है। आपने कभी सुना है कि एक स्थान मंदिर में दूसरे स्थान मंदिर का अटैक कर दिया, यहाँ के भग जाए चाकू लेकर गए यहाँ इसलिए ऐसा कर, कुछ नहीं करते ऐसा। क्यों? क्योंकि ये स्थान मंदिर भी जानता है कि हमारे परम पिता कौन है, कृष्ण है, हम क्या है, आत्मा है, हमें भगवान की सेवा करनी है। इधर वाला मंदिर भी जानता है, इधर वाला भक्त भी जानता है। तो कई बार अगर झगड़ा दिखता भी है तो इसलिए दिखता है कि वो सेवा अच्छी करना चाहते हैं, वो चाहते हैं आपने ऐसी सेवा करी हम आपसे अच्छी करेंगे, वो चाहते हैं आप गलत इतना हम सेवा अच्छा करके दिखाएंगे, वो चाहते हैं आप गलत ना करो और अच्छे ढंग से भगवान की सेवा करो, बस इसी के मत हो जाते और कोई कारण नहीं। तो इसलिए धर्म जो है दिन ब दिन कम होता जा रहा है और जो कम हो रहा है उसके अंदर इंद्रिय सुख अर्थात मन के हिसाब से चलने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है और हम उसको नुकसान भी देख रहे हैं। इसलिए अगर हम लोग भगवान के शास्त्र के हिसाब से जिनके शास्त्र दिए उसके हिसाब से जीवन जीना शुरू करेंगे तो बहुत आसानी से हम लोग अपने जो वास्तविक नेचर है भगवान की सेवा करना उसे फिर से प्राप्त कर लेंगे। हमारे यहाँ जो भक्त जुड़ते हैं भगवान का नाम लेते हैं तो नाम लेने से उनके सारे बुरे काम और गंदी आदतें छूटने लगती हैं और कुछ समय के बाद वो सारे नियम पालन करने लगते हैं और लोग उनको देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और हो आप ये भी करते हो, ये नहीं खाते, ये नहीं देते, इसके बाद भी खुश हो और जी कैसे रहे हो, आप तो इस जगत के लगते ही नहीं हो, ऐसे आश्चर्यचकित हो जाते बिना चाहे क्या जीते कैसे हो। लेकिन भक्त लोग आनंद में रहते हैं, वो लोग जो खाते हैं जो पीते हैं भगवान का असर करके खाते हैं, उन्हें पता है कि इसमें कोई किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं है, किसी प्रकार का पाप नहीं है, ये प्रसाद है जो मेरा फायदा करेगा। और इस प्रकार भगवान के भक्त सदैव खुश रहते हैं, आनंद रहते हैं आनंद में। और हम देखते हैं दुनिया वाले जिनके पास सब कुछ है धन के रूप में अपरियंस के रूप में वो फिर भी परेशान है दुखी है और थोड़ा सुख लेने के लिए अगर डिस्कवरी चले भी जाते हैं तुम्हारी लड़ाइयां कराते हैं पी के गिर पड़ते हैं या और कोई निशान हो जाते हैं। तो हमारे भक्त लोग सुबह 4:30 से नाचना शुरू करते हैं, मंगला आरती से बयान का गुणगान शुरू करते हैं और रात में नाचते रहते हैं। क्या किया, केवल बस अपने को थोड़ा सा भगवान के भक्तों के बीच में ले आएगा। जैसे होता है ना, आप बॉम्बे की ट्रेन में जाए, लोकल ट्रेन में इतनी भीड़ होती है कि वो धक्का मारते आपको चलना भी नहीं पड़ता, ऐसे ऐसे करके अंदर ले जाएगा आपको। अगर आप निकलना चाहते हो तो धक्का मारेंगे और अपना बाहर बाहर जाएगा, अंदर आगे चलना नहीं पड़ेगा। इसी तरह हम लोग भक्तों के बीच में आ जाना चाहिए। ठीक है, हमारा संसार अलग है, हमारा बिजनेस अलग है, हमारे यार दोस्त बाहर भी है, लेकिन उन संगति के अंदर रहकर हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई मत लग जाते हैं। हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, हमेशा हमारा मजाक उड़ाएंगे, वो कहेंगे ये कि हमारे भक्ति के 70 के बाद शुरू करते हैं। 70 के बाद पता नहीं जाना किसने कर रहा है, लेकिन हमें लगता है 70 के बाद शुरू करना चाहिए। किसी को गीता पढ़ते हुए देख रहे हैं तुमने आश्चर्य से कहते हैं कि तुमने जेल खराब कर लिया, ये क्या कर रहे हो आप, मतलब इनकी उम्र है, इतने देर कोई टीके लगा के घूम रहे हो, दिखावा कर रहे हो, आपको नाना प्रकार के ताले मारना शुरू कर देंगे। अरे माला लेके घूम रहे हो, हम भी घंटे ताले घूमते हैं, है ना। तो मतलब ये लोगों का धर्म है, कुत्ता घुमाना उनका धर्म है। भाग्यशाली वो कुत्ता जो घरों में सोचा भी लगता है, चार चार छह लोग खेला करते गाड़ियों में घूमता है और बस से अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास इलाज कराता है। तो ये कुत्ते हैं जो पिछले जन्म में कुत्ते से अटैच थे और धन से अटैच थे, तो उसी परिवार में फिर से आ जाते हो कि मैंने इतना कमाया था कैसे यूज करो। तो इस प्रकार हम लोग अगर उन लोगों के साथ रहेंगे, ऐसी चेतना वाले लोगों के साथ रहेंगे जिन्हें जीवन का लक्ष्य नहीं मालूम, जिनका जीवन का लक्ष्य है ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो शादी करो ऐश करो घूमो मजाक, कोई रेगुलेटिव लाइफ स्टाइल नहीं है, तो ऐसे लोग सो कॉल्ड एंजॉयमेंट करते हुए सफरिंग में होते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं और वैसे ही फ्रस्ट्रेशन रहती है जिंदगी में। उनसे पूछो आपके पास, वो खुद बोलते हैं कि आज हमारे पास धन है, बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, सब कुछ सेटल है, लेकिन एक चीज की कमी है, क्या कि तुम पीस ऑफ माइंड नहीं है, शांति नहीं है। आपने इतने बड़े बड़े माल लेके सब एंटरटेनमेंट के लिए, मन को डाइवर्ट करने वाले प्रोग्राम सारे टेलीविजन, मन को डाइवर्ट करने के लिए और नाना प्रकार के इंप्रेशन देने के लिए ताकि डिजायर डेवलप हो और ऐसे करने के लिए भागो। आपको चीज किसी चीज की जरूरत नहीं हुई है तो उसकी एड दिखा दिखा के पेनिट्रेट कर देंगे कि ये चाहिए चाहिए। एक अगर आपने क्रिकेट मैच देखे होंगे, एक ही एड को कितनी बार दिखाते हैं और फिर देखते बोलो सचिन तेंदुलकर को दिखाएंगे बाइक चलाते हुए हमें बिताएगा फिर और कहेगा टीवीएस का जवाब नहीं, उसने जिंदगी में टीवीएस से बैठा नहीं होगा, वो कभी चलाएगा भी नहीं, लेकिन हमारा बेस नहीं खराब है, हमें भी टीवीएस खरीद गया। शेविंग क्रीम में माताओं को दिखाते हैं अलग अलग व्यवस्था में कि भैया इससे शेव करोगे तो लड़कियां आसान आ जाएंगी आपके, वो खाल छीन देता है कोई भी आता पास, वो उसको लगता है पेनिट्रेट कर दी है डिजायर की, भैया देखो देखो तुम्हें जब तक तुम्हारे पास जी नहीं होगा तो तुम्हारे से जी नहीं होगा। सरफ की इतनी ऐड आती है, लोगों को लगता है सच में मैल निकल रही है, उसे मैल डाल के रखते हैं सरफ के अंदर, उससे कलर भी ऐसे छोड़ते हैं कि आप थोड़ा झाग तो सफेद दिखेगा, आप एकदम सफेद कपड़ा भी डालेंगे ना तो पानी में फेंके काला निकलेगा, लेकिन आपको लगता है कि अच्छा किसमें देते इसमें देते हैं, हम तो इस ईयर इस्तेमाल करते हैं, नहीं याद आ रहे हैं आजकल, उसमें कभी नहीं कपड़े धोएंगे धोएंगे, लेकिन आपके सामने बाल्टी में डाल के निकाल रही। कहने का क्या मतलब है कि एडवर्टाइजमेंट जो है ये हमारे माइंड को डाइवर्ट करते हैं। हम लोगों को कहते हैं जब तक आप ये कपड़ा नहीं पहनोगे, ये अंडर गारमेंट नहीं पहनोगे, ये नहीं पियोगे तो आपके अंदर जोश नहीं रहेगा, और इस प्रकार लोग नाना प्रकार की चीजें खरीद लाते हैं उस डिजायर को पूरा करने के लिए चोरियां करते हैं, झूठ बोलते हैं, टैक्स बचाते हैं और नाना प्रकार की चीजें करकर उन चीजों को खरीदना चाहते हैं, जिससे कोई मेरे पास ये नहीं होगा, मैं सफल नहीं होगा, अपना जीवन झोंक देते हैं उन चीजों में। जबकि जीवन जीने के लिए जो हमें चाहिए वो बहुत ही बहुत आसानी से उपलब्ध है, सिंपल थी। अगर आप अभी क्या है कि हम लोग कहने के दिल में रहता है कि अगर हमारे पास अच्छा धन होगा ना तो ये सब खाएंगे जो हमारे हृदय में इच्छा थी। पिताजी कहते हैं बेटा मैं इतना तो नहीं कमा पाया लेकिन तुझे इतना बड़ा होगा लिखाऊंगा कि कल तो इतना बड़ा आदमी बन जाए कि जो हमारी इच्छा रहेगी ना वो खा सके, वो पी सके, वो घूम सके। हर व्यक्ति ये सोच रहा है उनमें, तो बेटे को भी लगाता है इस मामले में कि चल तू भी कर, और फिर जब धन आता है तो वो सारी इच्छाएं पूरी करना चाहता है जिसे उन लोगों को देखता था जिनके पास धन है वो करते थे, कहते मैं भी करूंगा। लेकिन वो ये नहीं देखता था कि ये सब करके भी परेशान है, क्योंकि कभी भी कोई व्यक्ति धनी व्यक्ति की परेशानी लोगों के साथ शेयर नहीं करता। वो रहता है अकेले में टॉयलेट में, उसके घर परेशानी है लेकिन वो बताएगा नहीं। जब बाहर आएगा तो हमेशा हंसते हुए आप पूछे हवे में सर कहेगा यह टाइम टाइम मुस्कुराते हुए बोलेगा, लेकिन बहुत दुखी है हर व्यक्ति, हर व्यक्ति होगी। हमारा मंदिर में छोटा सा है पंजाबी बाग में हजार गज में, और यहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में 2200-2250 गज के घर है और 300-400 करोड़ का व्यक्ति वहां गरीब माना जाता है, गरीब बाकी से ऊपर वाले। और क्योंकि हमारा मंदिर पंजाबी बाग में तो वहां पर हमको डिस्कस नहीं करते, कई लोग मिलते हैं तो हमें वहां के हर घर की प्रॉब्लम पता है। आप मकान देखिए 4 फ्लोर का बना हुआ है और हर फ्लोर जो है 1000-2000 गज के बने हैं, लेकिन हमें मालूम है कि उसमें कितना लोन चढ़ा हुआ है, चारों भवन के अंदर कितना कमी चल रहा है और एक आधा आत्महत्या करने के लिए तैयार बैठा है, भवन में केस चल रहा है और इतनी इतनी समस्या चल रही हर घर में। लेकिन समाज में कैसे पता चलेगा कि बड़ा आदमी हूं, तो फिर वो क्या करते लोन लेकर दी गाड़ी लेकर। मुझे याद है व्यक्ति को जानता हूं, वो बिजनेस करता था और बिजनेस करते हुए उसके लिए अपने मकान का किराया निकालने में मुश्किल होता है, फैक्ट्री का किराया निकालता बड़ा मुश्किल होता था, उनकी उल्टी होती थी मतलब बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन वो गाड़ियां रोज जेल से नहीं आती थी, वो हमेशा निकालने में लेता था तो पुराने निकालता था यही लेता था, फिर उसे वो बड़ी नहीं लेता था। मैं कहता था आप क्यों करते हो, कहते मैं लोगों को कैसे पता चलेगा मैं एडवांस कर रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, कहते ये तो क्राइटेरिया जिसे लोगों को लगता है कि हाँ मैं आगे बढ़ रहा हूं। शुरू से लेकर शाम तक परेशान है इंस्टॉलमेंट भरने के लिए, शुरू से लेकर शाम तक परेशान है मकान की इंस्टॉलमेंट लोन देने के लिए अपना पूरा करने के लिए, लेकिन दुनिया को दिखाना है कि मैं सक्सेसफुल हूं उस चीज के लिए काम कर, और इतना दुखी इतना परेशान हो जाता है और लेकिन उसको आनंद आने लगता है। मालूम संघर्ष करते करते ही लोगों को आनंद आने लगता है। भाई जैसे एक एग्जाम्पल देंगे, दिल्ली में गाड़ी चला चला के हम लोग इतने अथेंटिव रहते हैं, दिल्ली में गाड़ी चला के सोते हैं हो नहीं सकता, हमेशा आगे घूमते होता, कभी कोई ब्रेक मार रहा है, टांगे वाला निकल रहा है, साइकिल वाला निकल रहा है, रेड लाइट हो गई, पुलिस वाले ने हाथ दे दिया, स्कूटर वाला आ गया आ गया, दूसरी गाड़ी टक्कर मार दी, यहां से निकाल वहां से निकाल, पुल में गिर गया, कुछ ना कुछ होता है, सही नहीं सकता आदमी गाड़ी, ब्रेक मार क्लच छोड़, ब्रेक मार क्लच छोड़, साइड मिरर बैक मिरर हाथ दे कुछ ना कुछ होता रहता है, सही नहीं सकता व्यक्ति, आराम सुन नहीं कर सकते गाड़ी में, और गाड़ी कैसे होते व्यक्ति आराम के लिए। और ऐसा व्यक्ति जब चला जाता है यमुना एक्सप्रेस हाईवे में तो क्या मिलता फिर वो, क्योंकि गाड़ी चलाए ना शांति के साथ, शांति से जिंदगी में कभी मिली नहीं, दिल्ली का आदमी का नजारा जो हर शहर में टीवी जैसे टीवी चलता ना आपको पलक झपकने तक का मौका नहीं मिलता, ये देखो ये देखो ये देखो तो पलक नहीं झलकता है, उसी तरह गाड़ी चलाते वक्त भी पलक झलकता है क्या, नहीं ये देखा ये देखा वहां पर ये बेट लगा, वहां पर इसी नई दुकान खोल ली, ये नया शोरूम खोला, ये एडवर्टीजमेंट देख ली, और ये खोल व्यक्ति आगे ज्वेलर का शॉप पता नहीं क्या था। तो जैसे ही हाईवे पर आता है 110 और 120 में उसको लगता है जैसे 40 पे चला रहा हूं, और मैं लेफ्ट में देखो तो हर बड़ी एक ही सीन है, राइट में देखो पूरी एक ही सीन है, सारे पेड़ एक जैसे लगे है ना, गाड़ियां तक नहीं दिखाई देती कि किसी दूसरी की गाड़ी को देगी, और ये क्या करता है सो जाता है शांति से, मतलब सहनी में बर्दाश्त ही नहीं होती, और बाद में वो पूरे परिवार के साथ कोई कटा पटा उल्टा मिलता है, आदत किस चीज की थी? संघर्ष की। उसी तरह हम जैसे लोग दिल्ली में अपनी लाइवलीहुड के लिए, मकान के इंस्टॉलमेंट के लिए, गाड़ियों के इंस्टॉलमेंट के लिए हमें संघर्ष कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, फिर यहां इन्वेस्ट कर वहां लगा, हर समय आंखें खुली हुई, कान खुले हुए, मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक भागते रहे आ रहे हैं। इतना ज्यादा संघर्ष की आदत पड़ गई है कि हमें चैंटिंग कर ही नहीं सकते बैठ के। कोई व्यक्ति हमें दे रही है क्या कहते दिमाग खराब रहते, कोई व्यक्ति बोल रहा है भाग में नहीं रहते बिना कुछ करने के लिए, दो घंटा कोई पैसा लगा दो, बिजनेस लगा दो, यार 5-10 हजार अंदर था छुट्टी खराब कर दी, दिमाग खराब कर दिया। वैसे लगता नहीं लगता कोई बिजनेस लैंग्वेज व्यक्ति है जिसको सुने चांद पैसा पैसा दिखाई देता है, आपको देख के क्या कर रहा है वहां से खड़ा होगा क्या बोलेगा? तो पागल दिमाग खराब हो रखेंगे, होली में जिन्हें पड़े थे हमारे भी चलो गायब हुए आज मेरे नाली में बड़ा मिला है तो मजा आएगा। तो वो हम पर हंसते हैं हमें उनको हंसी आती है, हंसी तो नहीं होती दया आती है। एक्चुअली अगर आपका बच्चा या कोई जानकार हमारा आपको मजाक उड़ाते नजर आए तो हमें उसको दया करनी चाहिए, उसको बहुत करना चाहिए। हमें दया आती है कि कम से कम उसको बेचारे को पता ही नहीं है जीवन क्या है वास्तव में। इसलिए कैसे हम भक्तों के सामने आते हैं तो जो शांति है अपने पूरा जीवन का पैसा कमाकर बड़े बड़े मॉल में जाकर अपने सेल्फ सर्टिफिकेशन करने के बाद भी जिस शांति को ढूंढ नहीं पाया है, ऐसी शांति हमारे भक्त लोग देवी से माला पकड़ते हैं, हरिनाम कीर्तन में नाचते हैं, उसे भी शांति मिल जाती है। पहले दिन से तुम्हें पता चलेगा कि शांति होती क्या। और शांति हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है, ये तो उन डिस्टर्ब लोगों का लक्ष्य है जिन्होंने जिंदगी शांति नहीं दी। हमारा जीवन का लक्ष्य शांति नहीं है, शांति तो हमारे यहां झाड़ू लगाती है, मतलब मेड नहीं कैमरा मतलब है। तो शांति जो उनका टॉपमोस्ट लक्ष्य है शांति, वो हमारा बेर मिनिमम स्टार्टिंग है शांति। हमारी तो फिलोसफी शुरू होती शांति से, जैसे ही हम लोगों को शरीर और आत्मा का भेद पता चलता है, फिलोसफी थोड़ी सी मालूम पड़ती है, तुरंत शांति हो जाती है। अरे ये जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ है जस्ट लाइक ए क्लोथ, ये कपड़ा है, मैं तो इसके अंदर हूं और मैं किन किन समस्याओं से परेशान था, ये करना है, ये करना है, ये देना है, ये लाना है, ये करना है, ये सारे शरीर की ड्यूटीज है, आत्मा की थोड़ी है। ये दुख से तकलीफ मुझे आ रही है जो समझ रहा हूं, ये मेरे को थोड़ी है, मैं तो आत्मा हूं। जब आप गाड़ी के अंदर होते हो और आपके पास 10,000 का लोन है, आपकी कार उतारती है आप उतारते हो, आपने पहले कार थोड़ी उतारती है। उसी तरह जो आनंद जो सुख की बात कर रहे हैं, संघर्ष की बात कर रहे हैं, वो शरीर से संबंधित है, आत्मा से उसको कोई लेना देना नहीं है, वो आत्मा तो भगवान से संबंधित है। तो सुख या शांति जो है यहां से तो हमारी भक्ति की बिगड़ी होती है और कहां तक जाती है, आनंद तक पहुंचती है। ये ऐसा आनंद है जो एक बार टेस्ट कर ले तो फिर उसको मन नहीं करता नीचे करने का। विदेशों में जो प्रभुपाद जी गए तो देखो सारी यंग जनरेशन एलएसडी चरस गंजा वगैरह इत्यादि ले रही है, और ये लोग इतने बिगड़ गए थे, महीने महीने नाते नहीं थे, तो पुलिस उनको कभी जेल में भी डालती थी तो भी परेशान होते थे, निकाल देते थे। इतना पैसा लगा दिया उनको डिरेक्शन काम में डाल के ठीक करने का, कभी ठीक नहीं हो पाते थे। लेकिन प्रभुपाद जी गए 70 वर्ष के बुजुर्ग और जैसे पेड़ के पीछे खड़े ऐसे कुछ पैसे में टाइम पार्क में हरे कृष्णा शुरू किया था, और वहां पर आके सारे भक्ति भाव वाले बैठे उधर तो चरण गांव में बैठे थे सारे, और फिर बाद कीर्तन शुरू किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, ये शुरू किया पिता जी ने। और वे सब लोग अपना ट्रेन टब्बा ढोलक बजाने लगे उनके साथ, फिर पीए रखा था, अच्छा लग रहा है ना सुनने में, नाचने लगे। लेकिन उन्हें पता नहीं चला कि हरियाणा से हुई क्या है। जैसे आग में आप हाथ डालो आंखें खोल कर या आंखें बंद कर बच्चा डालो, बूढ़ा डालो, लेडीज डालो, तो आग क्या करती है, बच्चों को छोड़ देती है ना। मिठाई खाकर बच्चों को लोगों को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ गई। उसी तरह जब हरि नाम लेंगे तो उसके नेचर है कि जिस दिन आपने भगवान का नाम ले रहा है उसके हृदय के अंदर जो टेंडेंसीज है, जो पाप है, जो कर्म कर्म पाप करने की वृत्तियां हैं, वो धीरे धीरे क्या होती है, नष्ट होती है और प्योरीफाई करना शुरू कर देते हैं हृदय को। तो ये हरि नाम की नेचर है। तो जब उन्होंने हरि नाम लेना शुरू किया तो उनको अच्छा लगने लगा। तो बाद में कहा अगर तुम्हें आनंद चाहिए तो छोड़ दो जो तुम ड्रग्स लेते हो। कहते क्यों लेते हो? तो उन्होंने बोला हम इसलिए लेते तो इसके हाल इसको पीने के बाद हाल नहीं होता व्यक्ति। दो चार दस दिन घंटे सारे दुनिया भूल जाता, सब झूमता रहता है। पिता जी ने कहा मैं तुम्हें एक ऐसी ड्रग दूंगा जिसको लेने के बाद स्टे हाई फोर आवर, मतलब एक बार लोगे तो नीचे नहीं करोगे। उन्होंने कहा अच्छा आपके साथ नहीं जाएंगे इंडिया से होगा जरूर मुझे इंडिया में अंदर मिलकर सारे साधु तो आप भी किसी दिन लाए होंगे। उन्होंने कहा लाया हूं इसको लेने के बाद तुम भी ऊपर मिलोगे। तो जैसे पूछे क्या क्या होगा तो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हर। बस ये करवाया उनसे और वो ऐसे झूमने लगे कि फिर उनको धीरे धीरे ढंग लेना अपने आप ही आदत छोड़ दी। इस पार्क के आज वहां की गवर्नमेंट ने लिखा है दिस इज द ट्री पेड़ के नीचे जहां से द हरे कृष्णा मूवमेंट हैज स्टार्टेड, वहां पर स्टोन लगाया अमेरिका गवर्नमेंट ने। तो वहां पर जो शुरू हुआ था हमारा, तो यहां पर भी लगाएंगे कुछ समय के बाद। तो कहने का क्या मतलब है, ये हमारे को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा थोड़ा सा। एक तो है एक तरह का संघर्षपूर्ण दुखदायी फुल ऑफ टेंशन एंड एंग्जाइटी लाइफ, और एक तरफ है बिना कुछ किए बिना टेंशन लिए बड़ा ही शांत स्वभाव और बड़ा ही आनंद पूर्वक लाइफ। एक तरफ सुबह से लेकर शाम तक मेहनत और संघर्ष, एक तरफ सुबह से लेकर शाम तक आनंद। ये हमने डिसाइड करने की क्या चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप वो जगत छोड़कर ना आ जाओ, हम भी इसी जगत में रहते हैं, आप भी इसी जगत में रहते हैं। करना क्या है यहां पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें और भगवान के नाम का जप हमेशा करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। दूसरा भगवद गीता जिसमें जो संदेश है कि भगवान कौन है, प्रकृति क्या है, जीवात्मा हम लोग कौन है, कर्म क्या होता है, काल क्या है, तमोगुण सतोगुण क्या है, इन सारे विषयों में बताया कि व्यक्ति जीना कैसे चाहिए जिससे कि हमेशा आनंद रहे। तो सत्तर के बाद भी पढ़ ली क्या पढ़ लिये? हाँ बिल्कुल, ये हमारी लिखी हुई है, इसमें लिखा है हमेशा आनंद सुख का अनुभव कैसे कर सकते हैं। तीसरा ऐसे ग्रुप्स जो आपके चल रहे हैं भक्ति परीक्षा की स्टडी क्लासेज, इसमें वीकली जरूर जाएं, क्योंकि अगर हम लोग वंस में वीक जाएंगे तो हमारी बैटरी चार्ज जाएगी। अगर आप चार्जिंग ना करें अपनी तो क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगी और फिर आपकी दुनिया करनी पड़ती। इसी तरह अगर हम लोग भक्तों के संग ना मिले, उनसे कथा ना सुने तो हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। इसलिए हमेशा चार्ज रहना है, तो मिनिमम वंस इन अ वीक इन क्लासेस में आना चाहिए अगर आप सीरियस हैं तो, और अगर नहीं भी हो तो भी आना चाहिए। क्योंकि माँ को मालूम है बच्चा दाल नहीं लेगा, तो माँ कहते बेटा खाएगा कहता नहीं तो सीरियस नहीं लग जाएगा, तो फिर माँ क्या करती है जोर से नहीं खरीदती उसका खाना डाल देती है, तो खाएगा बाद भी ऐसा बोलती है माँ, क्योंकि माँ को मालूम है उसका भला किसने। इसी तरह कई बार भक्त लोग बोलते हैं प्रभु आइए प्रभु जी आइए प्रभु जी आइए, आज कहते नहीं भैया जी आज यहां जा रहा हूं आज यहां जा रहा हूं आज ये काम आज वो काम। तो हमें ये सारे काम तो करने हैं लेकिन अर्जी फील करनी है। जैसे प्रियोरिटी सेट करते हैं ना, अगर प्रियोरिटी सेट है तो काम हो जाएगा। हमें किसी एक बारे व्यक्ति का टाइम हमेशा मिल जाता था तो बड़ा परेशान था, तो दूसरे का भाई तो सबसे महंगा पान ले ले, कैसे जाएंगे ले तो है उसको क्या महंगा पान दिला दें, वो घूमेगा छाती पे लगा के होना चाहिए तो मिला छह महीना लगा कहता घूमेगा कहता नहीं सुबह शाम देखना पड़ता कहता क्यों देखता क्योंकि प्रायरिटी है कहता अरे ध्यान दस लाख से इतना महंगा है कैसे घूमेगा वो उसी तरह तुम्हें लाइफ की जो है ना प्रायरिटी सेटिंग की अगर सोचते हैं उनका बच्चे वगैरह कर लेंगे अभी तो बड़ा टाइम है गीता ही क्यों पढ़ लेंगे मेरे लिए क्या ही नहीं ये भी तो नहीं पढ़ता ये भी नहीं पढ़ता कोई नहीं पढ़ रहा बड़ा सीख नहीं तो सीखे नहीं है खाली ऐसे हंसता है बाकी रहता है डॉक्टर वगैरह के तो इस प्रकार हम लोगों को अपनी प्रायरिटी सेट करनी कि मेरे जीवन का लक्ष्य मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ कैसे मैं इस जीवन में भी आनंद लगा सकता हूँ अपने परिवार को सुखी रख सकता हूँ अपने अपने बच्चों को अपने आने वाली जनरेशन में कैसे मैं ऐसा वातावरण दू जिससे कि भक्ति में आगे बढ़ू और संघर्ष तो बहुत है इस संसार में लेकिन फिर भी अगर हम तीन चीजें करते रहेंगे भगवदगीता इत्यादि पढ़ी हरे कृष्ण महामंत्र जो जुटे और वंश में अपने भक्तों के संग में बैठे तो निश्चित रूप से हम लोग भक्ति में आगे बढ़ेंगे ठीक है ना। और आज का जो उत्सव है इस उत्सव में हमें याद आना चाहिए प्रहलाद महाराज का जीवन ठीक है कि नहीं। प्रहलाद महाराज ने देखिए पांच साल का बच्चा हिरण्यकश्यप के पास सब कुछ था इंद्र तक उसके बरामदे में आके झाड़ू लगाता था डरता था जब वो कर लेते थे भगवती इंद्र तो इंद्र के लिए काटते थे हमें ना देखने गई कितने डरते थे सब उससे क्या नहीं था उसको सब कुछ था सबको मना कर देते कोई यज्ञ नहीं करेगा सबको देख देगा जो हमें यज्ञ होगा बोले हिरण्यकश्यप क्यों गलती ही नहीं सत्य में हो या कल तो देवताओं जो है देवता लोग भी क्या करते हैं सब डरते हैं सब उसे कहना मानते थे कमी नहीं थी किसी चीज की पैसे की गाड़ी की हर चीज था लेकिन एक अपना ही खून पांच साल का बच्चा प्रहलाद उसने बोला मैं नहीं करूंगा तुम्हारी जय मैं तो करूंगा भगवान कृष्ण की जय विष्णु की जय बड़ा परेशान हो गया भाई मैंने सबको जाकर ला लिया अपने आपने भी जाकर दी है ये पांच साल का प्रहलाद नहीं कर रहा बड़ा परेशान हुआ और उसको खिलासा से मालूम थी क्योंकि जो माता के गर्भ में तक क्या दी के जब हिरण्य कश्यप तपस्या कर रहे थे और वरदान प्राप्त कर रहे थे इस समय वो माता के गर्भ में थे नारद मुनि ने इंद्र के प्रकोप से बचाया उसकी माँ को इंद्र को लगा एक बार तो वहां पर हमारी मन हमारी हालत खराब करने की तपस्या कर रहा है दूसरे यहां गर्भ में ये दीदी तो हमारी हालत खराब कर देंगे इसको तो नहीं मार देते तो नारद जी ने कहा ना 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 ये तो बड़ा अच्छा भक्त था छोड़ दो उसको और फिर कयादी को कथा सुनाई भगवान का गुणगान किया उसने माता के गर्भ में प्रसन्न लिया और बाहर निकलने के बाद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 वेकेशन में वापिस आया समर वेकेशन के तो पूछा पापा ने बेटा तुम्हारा सबसे अच्छे सब्जेक्ट कौन है क्या पढ़ रहा है आजकल फिर उसने कहा क्या बोला शरण कीर्तन विष्णु शरण इज माई बेस्ट टॉपिक कहते खबरदार अगर विष्णु का नाम लिया शंकर रहने को दोबारा बोला क्लास टीचर से ये क्या है बच्चा मेरा ध्यान से पढ़ाओ क्या गलती से क्या सीख लिया दोबारा पढ़ाओ मैं तुम्हारी गर्दन कलम कर दूंगा तो भाई दोबारा पढ़ने क्या क्या सीख लिया इसने बच्चों को भी और भी लोगों को कंटामिनेटेड कर रहा है जिसे वेकेशन में अभी था कि आप बताओ क्या बोला कहते पिताजी छोड़ रही सर जंगल में जाओ ये जीवन तो अंधकूट के समान है जंगल में जाकर विष्णु का भजन करो कहते खामोश अपनी गोदी से गिरा दो पांच साल के बच्चे को इतना गुस्सा चढ़ाया और सारी शक्ति लगा डाली रंगा काला बिल्ला शेरू मारे उसको मरता ही नहीं था जहां से था कि वहां से भगवान बचा ले जहां से था कि वहां से भगवान बचा ले होली का आयुष की भाई कहते भैया मुझे भूल गए आप मैं तो फायर प्रूफ हूं उसको लेके मैं गोदी में बैठ दूंगा मुझे आग लगा देना तुम्हारा दुश्मन खत्म कहता हाँ भाई ठीक है और लगाते उसकी गोदी बिठाकर आग के लगते होते कुछ पता नहीं चल रहा क्या हो रहा अंदर और बाद में जब आग खत्म होती है क्या होता है सब कुछ रात में बदल जाता है, प्रलाल हो जाता है, हरे कृष्णा कर रहा होता है। तो प्रहलाद का जो डेडिकेशन था भगवान के प्रति, नीतीश सरकार था जो हमें कष्ट आते, जैसे आपने देखा होगा ना, आप जब कुत्ते के सामने पत्थर खा दो तो कुत्ता पत्थर के नीचे भागता है, और कभी शेर के पास पत्थर खा दो तो तुम्हारे नीचे भागता है। ये पत्थर के नीचे नहीं भागता, ये देखता फायदा किसी में। इसी तरह हमें किसके तरह से कंफ्यूजन है, शेर की तरह होनी चाहिए। जब दुख है, कष्ट है, तो मैं कष्टों के पीछे नहीं भागना चाहिए। आया टाइम करिए, यहाँ जाओ, इधर जाओ, ये करो, इसके पास जाओ, उसके पास जाओ, इधर मत करो। नहीं नहीं नहीं, मुझे करना भैया, जो लाल जनता वो कराइए, लेकिन टेंशन मत करिए। और ये देखिए कि कहाँ से आए हैं, कष्ट किसने दिए हैं। भगवान कहते हैं कि मैं इन सारे कर्मों का प्रबंध करता हूँ। तो शेर जैसी चिंता रखनी चाहिए कि कहाँ से आ रहे, किस कारण आ रहे हैं। तो इसी प्रकार प्रहलाद महाराज थे, सभी भगवान का स्मरण करते थे हर परिस्थिति। 5 साल के बच्चे थे, हमारे अभी 5 साल के बच्चे रहते हैं, बच्चों से माला पकड़ लिए, कई बच्चे माला करते थे 3, 4, 6, 8, 10, हमसे ज्यादा ग्रांति होती गई है ना। तो हमें भी जो है इस प्रकार का डेडिकेशन रखना चाहिए, तभी भगवान हमारी रक्षा भी करेंगे। और रक्षा का मतलब ये है कि भगवान का रक्षा करने का मतलब है कि वो चाहते हैं कि जो हमारा असली धन है भक्ति का, जिसके आधार पर हम गोलोक धाम जाएंगे, वो खत्म नहीं होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं बढ़ते हुए परिवारों में कहीं भी जल्दी मृत्यु हो जाती है, या कई लोग बहुत ज्यादा सफरी बीमारियां भी लगी होती है। तो कई बार लोग बोलते हैं कि इतनी भक्ति करके भी हो गया, इतनी भक्ति के लिए ऐसा एक्सीडेंट हो गया, ये जल्दी चला गया। तो ये हमारे को नहीं पता है, लेकिन भगवान की बुक्स में इसका रिकॉर्ड कुछ और है। हो सकता है कि आगे जाके इसकी भक्ति खत्म होनी हो सकता है वो गलत संगति में पड़ जाए, या इसके फिर जो कर्म है भगवान ने सोचे उसको रूपा के उसको ध्यान दिला लू, जाओ अच्छा इस सड़े संसार में मुझे फायदा क्या। तो भगवान की योजनाओं से भक्त चले जाते हैं, तो हमें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। कोई व्यक्ति 6 साल के लिए तरह केवल जीवन थी, भागवत को विशेष फिल्म में लिखा कि 13,000 साल नहीं जीने थे, तुम भी 100-150 के जीवन को उनको तेल मार लिया है ना। तो लंबी उम्र होने का कोई फायदा नहीं है अगर भक्त नहीं है। उम्र छोटी भी चलेगी लेकिन भक्ति की तो अच्छा है। कोई व्यक्ति बोले तो मैं 90 साल तक बिना किसी डॉक्टर के पास गए, बिना किसी कभी बीमार हुए, मैं एकदम फिट हूं, करा क्या भक्ति करी क्या, नहीं नहीं, मैं तो इसी क्लब में जाता हूँ, सब कुछ खाता हूँ, हर मीट शॉप में जाता हूँ, कलिंग के पास वहां भी सब कुछ खाता हूँ, फिर भी देखे जवा रहा हूँ। अरे भाई साहब, 90 साल में आपने 90,000 पाप कर लिए, 90 लाख हुए तो भरसा पड़ेगा कहाँ है लड़कों में, क्या फायदा हुआ ऐसे लंबी उम्र का। इससे बढ़िया है तो 10 दिन जिए चाहे 1 दिन जिए, हरे कृष्णा बोलकर छेड़ भी तो शरीर तो ही फायदा है कि नहीं। तो इस प्रकार हमें मानना होना चाहिए कि हमारे जीवन का फायदा किसमें है, समय कहां बिताना चाहिए। तो इस प्रकार अगर हम लोग भगवान के नाम का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तो यही चीज हमारे साथ जाएगी, इसी का हमें फायदा होगा। नहीं तो हर साल हमें लोग बोलते हैं हैप्पी होली, हर साल लोग हमें बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी डे, क्या एनिवर्सरी डे लोग दुखी रहते हैं, बट फिर भी तो हैप्पी हैप्पी बोलने से हैप्पी नहीं होगा मामला, क्या करने से होगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये तपस्या है, सारी दुनिया एक दूसरे का रंग खा के कीचड़ में फेंक रही है, लोगों को कुछ ना कुछ छोटे छोटे काम कर रहे हैं, कुछ पीला होगा, कुछ जीवा खेल रहा होगा, और हम यहाँ पर कड़क से धूप में बैठे हैं, धूप सबको लग रही है, लगे लग रही है, फिर भी लग रही है, बट फिर भी सहन कर रहे हैं। ऐसे नहीं कथा में आने का ये बता दो कि बाकी प्रसाद मिलेगा, नहीं कथा में आनंद आ रहा है, फिलासफी समझ के अच्छा नहीं लग रहा है, और क्लास के बाद सबके लिए क्या है, प्रसाद की व्यवस्था। तो कृष्ण और कृष्ण का प्रसाद भी एक है, कृष्ण और कृष्ण का नाम भी एक है, ईश्वर कृष्ण के भक्त एक है, इसलिए इनका हमेशा सदैव सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे प्रार्थना है कि होली के दिन में आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा, समझा होगा, निश्चित रूप से आप अवधि भक्ति कर रहे हैं और देवता के साथ कीजिए जैसे प्रहलाद महाराज ने करें, ताकि भगवान हमारी तरफ देखे, हम भगवान को प्रसन्न करें, ताकि ये समझ सके कि हाँ अब ये माया का दास नहीं है, अभी क्या है, कृष्ण दास है। माया दास सदा उदास, कृष्ण दास बिंदास। ठीक है जी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अभी बच्चों ने डांस तैयार किया है, तो ये डांस करेंगे, आगे इधर करेंगे ना, कहीं भी कर लेंगे, कहीं भी मिल जाएंगे।
हेलो, हम फोन पकड़ने